नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के इस अध्ययन को शुरू करने से पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि राजा नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा और जिसके अर्थ बताने के लिए उसने ज्योतिषियों, पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया कि वे उसके स्वप्न और उसका अर्थ बताएं। हम इस विषय पर देख रहे थे। आज हम उसके अर्थ को देखेंगे कि परमेश्वर के दास दानियल ने स्वप्न के अर्थ को राजा को बताया। तो इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं क्योंकि प्रभु सचमुच में आप अद्भुत परमेश्वर हैं जो सदैव हमसे प्रेम करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जिसे आपने हम सबों को दिया है। आज जब हम आपके वचन में से अध्ययन करना चाहते हैं, सुनना और सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि हम जब आपके वचन को सुने तो हम समझ सकें, जीवन में ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार चलने पाएं। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को हर एक प्रकार की बुराइयों से, बुरी बातों से, बुरी संगति से, व्यर्थ की चिंताओं से आप बचा के रखें ताकि वे आप में शांतिपूर्ण जीवन, आनंदमय जीवन जी सकें, एक प्रार्थनामय जीवन जी सकें। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार अवस्था में है। पिताजी, हमारी प्रार्थना है हर एक भाई बहन पर आप कृपा दृष्टि करें, उन्हें स्पर्श करें, उन्हें चंगाई दे ताकि वे स्वस्थ और भले चंगे होकर आपको धन्य कहने पाएं। आज के वचन पर अपनी आशीष दे, हम में से हर एक से बोले और बातचीत करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। राजा नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा और अपने सब ज्योतिषियों और विद्वानों को एकत्र किया। नबूकदनेस्सर की शर्त यह थी कि वे उसका स्वप्न भी बताएं और अर्थ भी समझाएं, अन्यथा उनका और उनके परिवार का सर्वनाश किया जाएगा। यह आज्ञा निसंदेह अत्यधिक कठोर और तर्क रहित थी, परंतु अति संभव था कि नबूकदनेस्सर को उनके साथ पूर्व में जो अनुभव हुआ था वह निराशजनक रहा था। जैसा कि हम आगे देखेंगे, उसका मानसिक संतुलन स्थिर नहीं था। यद्यपि दानियल उनमें नहीं था, परंतु आज्ञा के अधीन उसका और उसके साथियों का नाश होना भी तय था। ये ज्योतिष दानियल के गुरु भी थे, अतः उसने अपने साथियों के साथ उपवास और प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे स्वप्न और उसका अर्थ सुझा दिया। उसने राजा के सुरक्षा अधिकारी से विनय करके राजा के सामने उपस्थित हो स्वप्न और उसका अर्थ बताना चाहा। अतः उस सुरक्षा अधिकारी ने उसे राजा के सम्मुख पहुंचा दिया। राजा ने उससे कहा, तेरे सब गुरु लोगों के वश का तो यह नहीं है, क्या तू बताएगा, इसके अर्थ को मुझे समझाएगा? तब सुनिए दानियल का उत्तर क्या था। महान, अति महान प्रस्तुति है। दानियल के पुस्तक 2 अध्याय उसके 27 और 28 पद में हम पढ़ते हैं, दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। मेरे प्रियो, दानियल तुरंत बेबीलोन के विद्वानों की और परमेश्वर की बुद्धि का अंतर प्रकट करता है। कुरिन्थ को लिखे पत्र में पौलुस कहता है, 1 कुरिन्थियों के पत्र 1 अध्याय उसके 20 और 25 पद में, क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। जी हाँ, यह दानियल के लिए एक अद्वितीय अवसर एवं सौभाग्य था कि वह एक अन्य जाति राजा जिसका मन अंधकार से भरा हुआ है उस पर परमेश्वर का ज्ञान एवं बोध प्रकट करे। उसने कहा, भेंटों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। यह पद अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि दानियल की संपूर्ण पुस्तक में यही मुख्य बल है। यह स्वप्न अन्य जातियों के समय के अंत का वर्णन करता है। लिखा है अन्य जातियों के समय का अंत इसराइल के अंत समय के साथ साथ चलता है। दोनों ही समयों का अंत महाक्लेश में होता है। जिस युग में आप और मैं वास करते हैं वह मनुष्य का दिन है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 4 अध्याय उसके 3 पद में पौलुस कहता है, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। परंतु हम मनुष्यों के युग में वास करते हैं। मेरे प्रियो, यहां यदि एक बात को ध्यान में रखा जाए कि अन्य जातियों का समय अन्य जातियों की पूर्णता का समकालीन शब्द नहीं है। रोमियो के पत्र 11 अध्याय उसके 25 पद में पौलुस लिखता है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। अन्य जातियों की पूर्णता उस समय समाप्त हो जाएगी जिस समय कलिसिया उठा ली जाएगी, अंत के दिनों में और अन्य जातियों का समय। कलिसिया के अंतिम दिनों का पर्याय शब्द नहीं है क्योंकि वह कलिसिया के उठाए जाने के साथ समाप्त होगा जो महाक्लेश के आरंभ का समय होगा। अन्य जातियों का समय महाक्लेश में चलता रहेगा। उस समय परमेश्वर फिर इसराइल जाति की ओर अपना ध्यान लगाएगा। हम पढ़ते हैं आगे दानियल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों के खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। ध्यान दीजिए, नबूकदनेस्सर जब रात में सोने के लिए गया तब वह भविष्य के बारे में चिंतित था। उसका आरंभ निश्चय ही एक छोटे से राजा के रूप में हुआ था, परंतु अब वह एक महान विश्व शक्ति बन गया था। दानियल 2 अध्याय के 30 पद में हम पढ़ते हैं, मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु केवल इसी कारण खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार को समझ सके। नबूकदनेस्सर का स्वप्न उसके राज्य के भविष्य के बारे में था और उसके महान विश्व शक्ति होने के प्रतिफल का था। नबूकदनेस्सर अपने राज्य के विषय में परेशान था क्योंकि उसने अकस्मात ही देखा कि वह एक निरंकुश शासक और अधिपति था। उसका स्वप्न उसकी समस्या के निमित्त परमेश्वर का उत्तर था। परमेश्वर उसे उसी की मानसिकता में समझाना चाहता था। दानियल स्पष्ट करता है कि इसमें उसका कोई बड़प्पन नहीं है। जी हां, यह स्वप्न परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि बेबीलोन के ज्योतिषियों की जान बचाई जाए और नबूकदनेस्सर की जिज्ञासा शांत की जाए। परमेश्वर नबूकदनेस्सर को उसी की मानसिकता के अनुसार बाहरी महिमा और उसके राज्य के विभव के अनुसार ही स्वप्न दिखाता है। स्वप्न में परमेश्वर ने उसे उसके राज्य का बाहरी वैभव दिखाया था। यह स्वप्न एक अन्य जाति मनुष्य का स्वप्न था जिसमें परमेश्वर उसे एक छवि का दर्शन कराता है। नबूकदनेस्सर यह प्रतिमा या छवि पूजा करने के लिए नहीं थी। नबूकदनेस्सर मूर्ति पूजक था, इसलिए परमेश्वर ने उसे स्वप्न में एक प्रतिमा अर्थात मूर्ति का ही दर्शन करवाया क्योंकि मूर्ति की भाषा ही वह भली भांति समझ सकता था। नबूकदनेस्सर को अन्य जाति धर्म का सिर कहा जाता था। मेरे प्रियो, इस अध्याय में हम अन्य जातियों द्वारा संसार पर राज करने का इतिहास देखेंगे। दाऊद के वंश के झुक जाने के कारण परमेश्वर उसके वंश से राजदंड लेकर अन्य जातियों के हाथ में रखता है और यीशु मसीह के आगमन तक उन्हीं के हाथ में रहेगा। तदोपरांत मसीह उनके हाथ से राजदंड लेकर इस पृथ्वी पर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर राज्य करेगा। नबूकदनेस्सर के युग से आज तक वरन प्रभु के आगमन तक जब तक वह अपना राज्य स्थापित न करे अन्य जातियों का समय होगा। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 31 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। वह प्रतिमा भयावह थी, वह मन में श्रद्धा उत्पन्न करती थी, वह अत्यधिक भड़कीली, अनुपम और विस्मयकारी थी। जब दानियल उसका स्वप्न सुना रहा था उस समय काश मैं वहां पर होता और नबूकदनेस्सर के चेहरे के भाव को देख पाता जो विस्मय और विमूढ़ता के थे। जब दानियल ने कहा हे राजा तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति तुझे देख पड़ी और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी और उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। तो मेरे विचार में राजा एक बार तो सिंहासन से उछलकर खड़ा हो गया होगा। सही, बहुत सही, ऐसा ही था, तू सही कहता है। और वह अचंभित हुआ होगा। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 32 और 33 पद में आगे लिखा है, उस मूर्ति का सिर जो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। मेरे मित्रों, यह सुनकर राजा हतप्रभ पुकार उठा होगा, सत्य, अति सत्य, तू जो कहता है बिल्कुल ठीक है। अब वह दानियल द्वारा उसका अर्थ सुनने के लिए बहुत ही लायलायित हो गया। ट्रेजिलिस का कहना है, यहां जो कुछ भी कहा और प्रस्तुत किया गया है वह राजा की समझने की शक्ति के अनुसार था और जो बाहरी और प्रकट बातें थी वे मनुष्य के वर्णन अनुसार थी। जैसा हम पहले कह चुके हैं, परमेश्वर उससे उसी भाषा में बात कर रहा था जो वह समझ सकता था। मेरे मित्रों, यह प्रतिमा उसके समक्ष अचल थी। वह भयावह, भड़कीली, अनुपम और विस्मयकारी थी। उसका सिर सोने का, वक्ष और हाथ चांदी के थे। उसका पेट और जांघें तांबे की, पैर लोहे के और उसके पांव लोहे एवं मिट्टी के थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह प्रतिमा नाना प्रकार की धातुओं का संयोजन था। वह मिश्रित धातु तो नहीं थी, परंतु 4 धातुओं की अलग अलग संयोजित मूर्ति थी और साथ ही मिट्टी भी थी। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 34 और 35 पद में आगे लिखा है, फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। मेरे मित्रों, हम इसका अर्थ आगे चल करके देखेंगे। हम दानियल के अर्थ को सुने, अपनी ओर से कल्पना ना करें। नबूकदनेस्सर ज्यों ही सुनने में लीन हुआ त्यों ही एक पत्थर उठा जो मूर्ति के पांव में लगा और उसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि वह मूर्ति चूर चूर हो गई और वायु में उड़ा ली गई। उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके बाद वह पत्थर बड़ा होता गया और संपूर्ण धरती पर छा गया। अब वह पत्थर उस मूर्ति के स्थान पर था। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं चार विश्व शक्तियों की व्याख्या और उनका भविष्य। दानियल की पुस्तक 2:36-38 पद में लिखा है, स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है, और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। नबूकदनेस्सर पहला विश्व शासक था। मेरे विचार में यह आदम के लिए परमेश्वर का मुख्य विचार था। उसे प्रभुता दी गई थी, परंतु उसने उससे हाथ धो लिए। संसार ने चार मुख्य विश्व शासकों को देखा है और चार ऐसे महान देश हुए हैं जिन्होंने संसार पर राज्य किया है, परंतु वे सफलता से चूक गए। इससे पहले शासक ने सर्वोत्तम शासन किया है। मेरे प्रियो, दानियल ने समय गंवाए बिना स्वप्न का अर्थ बताना आरंभ कर दिया। ये विभिन्न धातु विश्व शक्तियों का प्रतीक थे, जिनका सिर नबूकदनेस्सर था जो सोने का था। वह उस प्राचीन संसार का शासक था। उसके अधिकार पर उंगली उठाने वाला कोई भी नहीं था। वह एकमात्र शासक था। प्रसंगवश उस समय से आज तक उसके तुल्य बहुत ही कम राजा हुए हैं। दानियल की पुस्तक में ही नहीं, बाइबल की अन्य पुस्तकों में भी इसका उल्लेख है। दानियल की पुस्तक 5:18-19 पद में, यर्मिया की पुस्तक 27:5-11 पद में। यर्मिया की पुस्तक में परमेश्वर कहता है 27:5-7 में, पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, और जिस किसी को मैं चाहता हूं उसी को मैं उन्हें दिया करता हूं। अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दे दिया है कि वे उसके अधीन रहें। ये सब जातियां उसके और उसके बाद उसके बेटे और उसके पोते के अधीन उस समय तक रहेंगी जब तक उसके भी देश का दिन न आए। तब बहुत सी जातियां और बड़े बड़े राजा उससे भी अपनी सेवा करवाएंगे। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को सर्वोपरि बनाया। परमेश्वर ने उसे प्रथम विश्व शासक बनाया, और सच तो यह है कि आज तक उसके जैसा दूसरा नहीं हुआ है। दानियल के पुस्तक 2:39 पद में लिखा है, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। नबूकदनेस्सर के बाद आने वाला राज्य उससे छोटा होगा और तीसरा दूसरे से भी छोटा होगा। चौथा साम्राज्य और भी छोटा होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि चौथा साम्राज्य सबसे खराब होगा। इस पद में दो राज्यों का उल्लेख है। चांदी के हाथ मादी और फारसी राज्यों के प्रतीक हैं। दानियल 5:28 पद में बेबीलोन के भविष्य के बारे में हम देखते हैं कि बेबीलोन को दो भाग करके मादी और फारसी राजाओं के हाथों में दे दिया जाएगा। अतः हमें इस दूसरे राज्य के बारे में कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। स्मरण रखें कि दानियल इन दोनों राज्यों में रहा था। दानियल के पुस्तक 6 अध्याय उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। मेरे मित्रों, तीसरा राज्य पीतल का राज्य होगा और उसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। यह राज्य यूनान और मकीदुनिया का होगा, सिकंदर महान का। ध्यान देने की बात यह है कि यहां 5वां राज्य है ही नहीं, केवल 4 राज्य हैं। आज हम 4थे राज्य के युग में हैं और इस प्रकार से हम राजा के स्वप्न को देखते हैं कि दानियल ने उसके अर्थ को उसे बता दिया। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा ही ऐसे कार्यों का संभव होना जरूरी है, अन्यथा मनुष्य अपने बुद्धि और ज्ञान से ऐसी बातों को नहीं रख सकता, नहीं बता सकता। मेरे प्रियो, आइए आज हम इस वचन के प्रकाशन में अपने जीवन को प्रभु की निकटता में लाएं, क्योंकि परमेश्वर महान है। वह जानता है कि हमें किन बातों के द्वारा समझाया जाए। दानियल के द्वारा से उसने राजा को उसकी बातों को बता दिया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से हमसे बातचीत करता है। मेरे प्रियो, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Thank you.